नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कांडला में बंदरगाह क्षेत्र में भारत के पहले मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र के चालू होने को स्थिरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है। दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण की ये परियोजना देश के नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये एक सराहनीय प्रयास है और हमारे नेट जीरो दृष्टिकोण को बल प्रदान करता है। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा उद्घाटन की गई यह परियोजना हरित बंदरगाह अवसंरचना में भारत की प्रगति को दर्शाती है। मात्र 4 महीनों में निर्मित यह संयंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मई 2025 में घोषित 10 मेगावाट की एक बड़ी हरित हाइड्रोजन परियोजना का पहला मॉड्यूल है। 140 मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन की वार्षिक उत्पादन क्षमता के साथ यह सुविधा भारत के नेट जीरो यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। दीनदयाल बंदरगाह मेगावाट स्तर के हरित हाइड्रोजन संयंत्र को संचालन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है। पूरी तरह से भारतीय इंजीनियरों द्वारा विकसित यह संयंत्र स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लिए भी एक मानक स्थापित करता है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर आज दोपहर बाद 5 दिन के सरकारी दौरे पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी होगा जिसमें कई कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और व्यापार प्रतिनिधि शामिल हैं। राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद श्री मार्कोस की ये पहली भारत यात्रा है। इस दौरान श्री मार्कोस कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर का भी श्री मार्कोस से भेंट करने का कार्यक्रम है। पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत समारोह आज शाम नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के कलाकार इस संगीत संध्या में प्रस्तुति देंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज से मुंबई में शुरू होगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में रेपो रेट में कटौती पर चर्चा की जाएगी। समिति के निर्णयों की घोषणा बुधवार को की जाएगी। भारत का स्मार्टफोन निर्यात वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 58% बढ़कर $7.72 अरब हो गया है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इस बढ़त में सर्वाधिक योगदान एप्पल का रहा है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल जम्मू विश्वविद्यालय में विकसित भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित किया। श्री सिन्हा ने युवाओं से ज्ञान की क्षमता का दोहन करने और देश के सामाजिक परिवर्तन तथा आर्थिक विकास में योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी भारत की सदी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु के रूप में अपनी स्थिति पुनः प्राप्त करने की दिशा में बढ़ रहा है और हमारी युवा पीढ़ी इस यात्रा में सबसे बड़ा योगदान देगी। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, हिमाचल प्रदेश, केरल और माहे, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज वर्षा का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, कर्नाटक और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बिजली चमकने, तेज हवा चलने और गरज के साथ वर्षा होने की संभावना है। क्रिकेट में ओवल में खेला जा रहा एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का 5वां और अंतिम टेस्ट मैच रोमांचक दौर में पहुंच गया है। मैच के 5वें दिन आज मेजबान इंग्लैंड अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 339 रन से आगे खेलेगा। इंग्लैंड को जीत के लिए सिर्फ 35 रन और चाहिए, जबकि भारत को जीत दर्ज करके सीरीज बराबर करने के लिए बाकी बचे 4 विकेट लेने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।